आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारल के समय सार गाथा 38 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराय गौरव क्या चकाते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतर।
तीसवीं गाथा के प्रसंग में चर्चा चल रही है समय सार अनुशीलन का 305वां प्रश्न निकाल लें आप। इसमें ये बोल्ड टाइप में है ना, इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़ कर महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। इसकी व्याख्या अपन ने कल बहुत विस्तार से की थी कि महान ज्ञान प्रकाश प्रकट हुआ है, वो क्या है ज्ञान प्रकाश, महानता उसमें क्या है। देखो ये मूल आचार्य अमृतचंद के शब्द हैं। इस पर वाक्यों का प्रयोग तो देखो, भाषा का जोर तो देखो, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए वाक्य हैं और कितनी जोरदार प्रस्तुति है। उक्त कथन में प्रबल आत्मविश्वास भरा हुआ है। क्या आत्मविश्वास, ज्ञानी जानता है कि अनंत बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं। समझ गए, तो इसमें क्या है, क्या देखो, फिर ज्ञानी जानता है कि अनंत बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं, तो इसमें क्या है। यह तो मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है, इससे मुझे कोई भय नहीं है। हमें डर लगता है पर पदार्थ मेरे ज्ञान के घेरे बन जाएंगे तो न मालूम क्या अनर्थ हो जाएगा। क्यों, फिर उसमें डर का बात का है। यह तो मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इससे मुझे इंकार भी नहीं है कि मुझे नहीं जानना नहीं जानना नहीं जानना। देखो पहले तो जानता नहीं है, ये बात तो है ही नहीं, लेकिन नहीं जानना ऐसा भी इंकार नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे स्वभाव की ही विचित्रता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए अहितकारी हो। मेरी स्वरूप संपदा में झलकने वाले पर पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ते। हाँ, जब मैं उनमें अपनापन करता हूँ, उन्हें अपना जानता हूँ, तभी मोह उत्पन्न होता है। परंतु मुझे तो ज्ञान प्रकाश प्रकट हो गया है, अतः मुझ में झलकते हुए भी वे पदार्थ मुझे मुझ रूप भासित नहीं होते, अतः मुझ में मोह भी उत्पन्न नहीं करते। तीन पॉइंट होगा इसमें अलग अलग। एक तो मैं पर को जानता नहीं हूँ, और एक पर को जानता तो हूँ लेकिन जानना नहीं है, क्योंकि वो जानने से बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, मेरा अकल्याण हो जाएगा, ख्याल में है ना। तो कहते हैं कि ना तो जानता नहीं हूँ, ये बात भी पूरी तरह सर्वथा सही नहीं है, और जानने से गड़बड़ी हो जाएगी ये भी सही नहीं है। तो क्या है फिर, तो पर को जानने का निषेध क्यों किया जाता है, कि पर को जान कर जब उसमें अपनापन करते हैं तो सारी गड़बड़ी होती है। तो वास्तव में निषेध तो उस अपनापन का है, लेकिन लोक में भी ऐसा होता है कि अपना बच्चा पड़ोसी के घर जाता हो, पड़ोसी का बच्चा अपने घर आता हो, तो वास्तव में अपन को कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि कभी कभी तो अपन प्रेरणा करते हैं कि जाओ बच्चों, पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलो, उसके पास खेलो, पप्पू के साथ खेलो, मेरी माता क्यों खाते हो, क्यों। लेकिन रोजाना झगड़ा हो, एक एक खिलौने पर लड़ पड़े, क्यों, पड़ोसी की शिकायत रोजाना आए, तो कहते हैं तू यदि पड़ोसी के घर में गया तो टांग तोड़ दूंगा। तो वास्तव में पड़ोसी के घर में जाने का निषेध है कि वहां जाकर झगड़ने का निषेध है। भाषा तो नहीं, वहां गया तो टांग तोड़ दूंगा। तो ये अज्ञानी जीव जिसको जानता है उसे ही अपना मान लेता है। ये लोग में कहावत है, जहां मिली दो वहीं रह सो, जिसे जानता है वहीं जम जाता है, वहीं रम जाता है। ऐसी प्रकृति वाले को एक कह रहे हैं कि तू अपने को ही जान, तो तू जहां जानता है वहीं जमेगा रमेगा ना, तो अपने में ही जम और अपने ही में रम, क्योंकि पर में जाता है तो वहीं जम जाता है। इसलिए तो वास्तव में तो पर को अपना मानने का और उसमें जमने रमने का निषेध है। ना ऐसे जानने रूप निषेध है कि जानता नहीं है, ऐसा निषेध भी नहीं है, और जानने से अनर्थ हो जाएगा इसलिए जान मत, ऐसा निषेध नहीं है। वास्तव में तो ये ज्ञान स्वभाव का अपमान है। गड़बड़ी तो की राग स्वभाव ने, मिथ्यात्व ने अपना मानने की, और दोष मर गया जानने पर। क्यों होता ही है, होना ही चाहिए। दूध कलारन हाथ लख मद समझे सब ताई। रोजाना शराब लेके निकलती हो और उसी डब्बे में दूध भी लेके निकले तो दुनिया तो शराब ही समझेगी। ये जानने वाले अज्ञानी लोग जिसको जानते हैं उसे वो अपना मान लेते हैं और उसमें जम जाते हैं, रम जाते हैं, तो बेचारा वो जानने वाला ज्ञान भी बदनाम हो गया। तो जमना रमना पाप क्यों है और उसे अपना मानना पाप क्यों है और जानना पाप क्यों नहीं है हेमचंद जी? क्योंकि जानना तो स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक तो स्वभाव है, स्वपर ग्राहक स्वभाव थोड़ी है, स्वपर रमना स्वभाव थोड़ी है। स्वभाव तो स्वामी ही रमना जमना है, पर में रमना जमना तो विभाव है, लेकिन ऐसा पर को जानना वो विभाव नहीं है। कैसी मिल गई अब तो स्वाध्याय ख्याल में ना बात। जो चारित्र गुण है उसका अपनी आत्मा में रमण करना ये भी चातुर गुण की परिणति है, और पर में रमना ये भी चातुर गुण की परिणति है। तो स्वामी रमना ये उसका स्वभाव है, स्वभाव पर्याय है, और पर में रमना ये विभाव पर्याय है। ऐसे ही श्रद्धा गुण में अपने में अपनापन करना ये स्वभाव पर्याय मन सम्म दर्शन है, और पर में अपना करना मिथ्या दर्शन है। ऐसे ज्ञान गुण में थोड़ी है स्वा को जानना वो सम्यक ज्ञान है और पर को जानना वो मिथ्या ज्ञान है, ऐसा है? हाथ पर रखे हुए जैसा हूं जैसा अंतर है। और श्रद्धा और चारित्र गुण जैसा ही ज्ञान के साथ ही व्यवहार करने लग गए हैं। आत्मा में अनंत गुण है, वो अनंतों में से एक गुण ही ऐसा है कि जिसका पर के साथ संबंध हो तो उसमें कोई बंध नहीं होता, बाकी अनंत गुणों में से किसी का भी होगा बंध होगा, क्योंकि वो एक गुण का सुपर प्रकाशक स्वभाव है, बाकी का स्वभाव नहीं है, और उसी वजह से पूरे आत्मा को सुपर प्रकाशक कहते हैं।
क्या
तो इसलिए कहते हैं, जो अभी अभी मैंने पढ़ा फिर ध्यान से सुनना उसको, जो मैंने इतनी कमेंट किया उसके बाद में उसमें ध्यान से सुनना। उक्त कथन है, अनंत पाही पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने से क्या गजब हो गया, इसमें से तूफान खड़ा क्यों करते हो?
आप
हमारे घर का बच्चा शिविर में चला गया, इतना तूफान क्यों खड़ा करते हो? क्या हो गया? अभी बेस्ता के घर चला गया है क्या, कि सिनेमा में चला गया है क्या? सिनेमा में रोजाना जाता है तो कोई तूफान नहीं खड़ा करता, क्यों? मुशायरे में जाता है तो भी खड़ा नहीं करता है, कभी सम्मेलन में जाता है तो श्रृंगार की गंदी गंदी कविताएं होती है तो कोई तूफान खड़ा नहीं करता है, क्यों? होटल में जाता है तो कोई तूफान खड़ा नहीं करता है, और न जाने कहां कहां जाता है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। बाहर में जाता है, बाहर जानते हो क्या होता है? मैं खाने में जाता है तो कोई को झगड़ा खड़ा नहीं करता है, यहां ऐसे ही मुमुक्षुओं में भी ये दोष आ गया है। जाना घर क्यों घबराते हो, क्या हो गया? जहां सर्वज्ञ भगवान ने किया वही तो किया है उसने। तो सुनना, अनंत बाई पदार्थ मेरे ज्ञान में झलक, मैं जानता हूं नली बात नहीं है निर्मल जी, जानने में तो बुद्धिपूर्वक है, विवेक पूर्वक है, तो तू अपनी बुद्धिपूर्वक गया है उसका तो हम निषेध करेंगे, आत्मा में क्यों नहीं गया? अब जानने में आ गए क्यों? हम रेल में बैठे खिड़की के बाहर देख रहे हैं तो बहुत से पदार्थ उनमें हमारे देखने में आते हैं कि नहीं आते हैं? आ गए तो आ गए, क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या तकलीफ है? नहीं। और यदि हम किसी को रस पूर्वक देखें तो तकलीफ है, तो लोक में भी ऐसा है कि नहीं है? अपन मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान की तीन प्रदक्षिणा देते हैं, आंख खुली रखना या बंद रखना, बोलो सेठी जी? खुली रखना, नहीं तो किसी माँ बहन से टकरा जाओगे, मुश्किल हो जाएगी। खुली रखना ना, रखना। अभी ऐसे में क्या है कि प्रदक्षिणा में अशोकनगर में पहले रहता था, तो गंज का मंदिर है ना अशोकनगर में, तो उसमें जो प्रदक्षिणा है उस प्रदक्षिणा में सामने जाकर के एक दर्पण लगा है बहुत बड़ा, अभी भी लगा होगा। मैंने बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए हैं, अब गया तो था लेकिन मैं वहां इमरजेंसी लगी थी इसलिए दर्शन करने वहां नहीं जा सका, लेकिन वो दर्पण अभी लगा होगा। 7.75 वर्ष तक मैं वहां रहा, 9.25 वर्ष तो वो दर्पण लगा था। उसमें क्या होता है कि जैसे कि अपन प्रदक्षिणा दे रहे हैं तो एकदम अपने दर्शन होते हैं जाते ही, क्यों, और बराबर वो बेदी के पीछे होते हैं जब अपन जब दर्शन होते हैं तो लोग प्रेम से करते हैं, भगवान के जितने प्रेम से नहीं करते हैं, टोपी वोपी ठीक कर लेते हैं बाल मांसी के, कोई कोई तो कंघा निकाल के बराबर। अभी कोई मैं जा रहा हूं मान लो, ध्यान से सुनना, और मेरे पीछे कोई बहन आ रही बहुत सुंदर खूबसूरत, तो वो भी उस दर्पण में तो झलकेगी कि नहीं झलकेगी, तो वो मेरे को दिख जाए तो क्या पाप है, है पाप कोई? अब सुनो, अब मुझे वो खूबसूरत बहन दिखी और ऐसा वो किया, पाप है कि नहीं है बताओ? तो दिखने में और देखने में फर्क समझ में आया कि नहीं आया उस्ताद जी साहब? क्योंकि वो दर्पण में दिखी वो तो नेचुरल है, क्योंकि दर्पण में उसका प्रतिबिंब आना स्वाभाविक है, और मैं दर्पण के सामने खड़ा हूँ उधर जा रहा हूँ और मैं भले ही अपना चेहरा देख रहा हूँ, अपने आप अपने को देख रहा हूँ, तो भी उसमें जो चीज झलकेगी वो भी मेरे ज्ञान का गे बन जाएगी। लेकिन मैंने जो पीछे मुड़ के देखा वो अकेला देखना नहीं है, उसके पीछे उस देखने से अधिक कुछ है, और वो जो अधिक कुछ है वो पाप है। क्या है अधिक कुछ? बोलो डॉक्टर साहब। वो अधिक कुछ ये है कि मुझे देखने का राग हुआ है, अकेला देखने की जिज्ञासा नहीं हुई है, तो आकर्षण अंदर में हुआ है ना, तो वो चारित्र गुण में विकृति हुई है, और वो तो बंध का कारण है ही, बंधे एक रागा दी अशुद्ध उपयोग सो। इसलिए ये कह रहे हैं कि वो देखने में कदाचित पाप कहे तो उससे ज्ञान और दर्शन गुण का दोष मत समझ लेना। क्या वो तो उसमें राग मिश्रित हो गया है, उस राग की निंदा है, वो निषेध है, वो उस राग का है। इसलिए लिखा ना कि पर कहा गया 305 है ना, हाँ, अनंत बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं, तो इसमें क्या है भाई? ये तो स्वभाव है, उसे आप मेट भी नहीं सकते, दर्पण है, वो तो दर्पण का स्वभाव है ना कि सामने के पदार्थ उसमें झलके, तो दर्पण की ये ताकत है कि कोई सामने पदार्थ वाले झलकने वाले को रोक ले। बोलो, यदि वो दर्पण जब तक निर्मल है तब तक तो उसमें झलकेंगे, नहीं साहब पर्दा डाल दो तो नहीं झलकेंगे, क्यों भगवान कैसे नहीं झलकेंगे? पर्दा डाल दोगे तो पर्दा झलकेगा, शर्त तो यही है ना कि उसके सामने जो होगा वो झलकेगा, ये तो शर्त है नहीं कि सामने के नहीं होगा वो भी झलकेगा, आड़ में होगा वो भी झलकेगा, तो पर्दा डाल दोगे तो पर्दा झलका। वो कोई पर पदार्थ की भी ताकत नहीं है कि सामने दर्पण हो तो वो उसमें नहीं झलके, और दर्पण की ताकत नहीं है कि पर पदार्थ उसमें झलके तो उसे रोक दे। अब इसे तुम ताकत नहीं है, मैंने कमजोरी सी लगती है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, क्यों? अब इसे ऐसा बोलो कि ज्ञान दर्पण दर्पण में ये शक्ति है कि जो पदार्थ उसके सामने हो उसमें झलके ही, और उन गेहूं में ये शक्ति है, उसी को शक्ति भी नाम से कह सकते हैं कि सामने दर्पण हो तो उसमें झलके ही, कोई समझे ना, झलकने को बाद देश में कोई परतंत्रता की बात नहीं है, परतंत्रता तो जब तकलीफ हो और वो न झलकना चाहे और जबरदस्ती झलक जाए, ऐसे ज्ञान दर्पण का ये स्वभाव है, ये शक्ति है, उसका स्वभाव माने शक्ति, कमजोरी नहीं है कि क्या करें भैया हमने तो बहुत कोशिश करी कि हमारे ज्ञान में वो न झलके लेकिन वे झलके ही गए, भैया ये तेरी कमजोरी नहीं है, ये तेरी शक्ति है, ये तेरा विचित्र वीर है, विचित्र शब्द का विचित्र ज्ञान शक्ति है, और गेहूं में विचित्र ये शक्ति है कि वो ज्ञान में आकार झलके, लेकिन उसके साथ तेरा राग जुड़ता है तो वो तेरा पाप है। अब वो कहता कि नहीं नहीं भाई साहब मेरे को तो यदि दिखाई देता है तो फिर तो राग हो ही जाता है, तो हो जाता है तो तू देखना बंद करना पड़ेगा, तेरे को हमें उपाय नहीं है। ये लगती है ना प्रदर्शनी लगती है ना नुमाइश गवर्नमेंट की तरफ से लगती है और लोगों को भी लगाते हैं तो उनमें एक नियम है कि वो अच्छी अच्छी चीजें कलाकार की चीजें रखी होती बढ़िया पिकासो के चित्र लगे हैं हर आदमी को देखता है तो उसे छूने की इच्छा होती है तो उसमें कांच जड़वा दिया क्यों जड़वा इसीलिए ना कि लोग छूएंगे तो खराब हो जाएगी अब सामने वाला जानता है कि इसमें कांच जड़ा हुआ है मैं छूंगा तो कांच छूने में आने वाला है चित्र छूने में आने वाला भी नहीं है फिर भी उसे इच्छा होती है और लोग इतना छूते हैं कि वो दर्पण कांच मेला हो जाता है सफाई प्रक्रिया सफाई करते करते परेशान तो उस पर लिखवा दिया डोंट टच कोई छुए नहीं तो लोग पढ़ते हैं कि छूना मना है और छूते तुम समझते ही नहीं हो ये मना तो बड़ा खतरनाक शब्द है ये मना कहते हैं तो लोगों को और ज्यादा उत्सुकता होती है ये माताएं बहने पर्दा करती हैं तो लोगों को उसका चेहरा देखने की बहुत इच्छा होती है और पर्दा खोल दिया तो कोई मुंह उठा के भी नहीं देखता इतना कोई देवांगना थोड़ी है तो देखते ही रहेंगे किसी को कोई रस नहीं है ना फुर्सत नहीं है लेकिन तुम छिपाते हो तो ज्यादा देखने की इच्छा होती कि नहीं होती है ऐसे तुम किसी चीज को मना करोगे तो लोगों को ज्यादा उत्सुकता होती है कसम दिलाओगे ना कि तुम्हें कसम है कि इसको देखना मत तो वो कहेगा भाई इतनी क्या खतरनाक चीज है जरा देख के तो देखू ये कसम क्यों दिला रहे वो हुआ था आपको मालूम आपसे भिंडर में क्या नहीं तो भिंडर में थे भिंडारी जी और वहां साहब ऐसा कितना सिरे चलता था और वहां कसमें दिला दी थी तो बेचारे सब लोग रुक गए क्या करें लेकिन वो स्पीकर लगे थे और सब जगह आवाज जाती थी आदमी की तो मैंने एक दिन व्याख्या करी व्याख्यान में कहा कि ये पुरुष घबराए तो घबराए ये माताएं रहने क्यों घबराती है इनकी तो जब शादी हुई थी तो सात सात प्रतिज्ञाएं हुई थी दीदी जी दीदी और सात प्रतिज्ञाओं में पुरुषों ने रखी थी शर्त क्या कि तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना कहीं मेले ठेलों में नहीं जाना होगा क्यों तो उन्होंने उसके बदले में शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारी ये शर्त मानने को तैयार हूं लेकिन तुम्हें भी पंच कल्याणक में जाने से नहीं रोकना होगा धर्म काम में जाने से नहीं रोकना होगा किसी शिविर विविर में जाने से नहीं रोकना होगा और जब उस आदमी ने शर्त मानी थी तब तुमने बरमाला उसके गले में डाली थी तो अब कोई तुम्हें प्रतिज्ञा कैसे लगा सकता है वो प्रतिज्ञा जो तुम पहले ही छूटी हुई हो इसलिए तुम पर ये प्रतिज्ञा लागू नहीं होती है तो दूसरे दिन पंडाल छोटा पड़ गया अब कह क्या करे जगह ही नहीं थी इतनी तो वो उसे निकाल कर फिर दूसरा बाहर और वो पंडाल तो अंदर था ना उसके बाहर स्टेज लगाना पड़ा और बाहर भी जगह कम पड़ने लग गई अभी इतनी जगह ही बड़ी नहीं थी वहां कैसे क्या कर दी सब महिलाएं टूट पड़ी इंतजार ही कर रही थी वो धर्म भीरुता के कारण डर लग रहा था कि प्रतिज्ञा भंग का महापाप है तो उन्होंने कहा पाप लगा जो प्रतिज्ञा भंग का पाप लगा वो मेरे खाते में उससे यदि नरक जाओगे तो पंडित हुकुमचंद नरक जाएगा तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा तो महिलाएं आई तो धीरे धीरे पुरुष भी आने लगे नहीं आएंगे प्रदर्शन सुनने तो महिलाओं को भेजने आएंगे छोड़ने के लिए और फिर लेने आएंगे क्यों तो अनुमोदना तो उनकी भी हो ही गई ना तो अनुमोदन अपने यहां तो कृतकारित अनुमोदना का बराबर पाप पुण्य है तो अनुमोदना का पाप यदि हो ही गया तो फिर लाभ लेने से क्या को वंचित होते रहा तो दूसरे दिन पुरुष टूट पड़े अरे भाई पर को जानना तो आत्मा का स्वभाव है उसमें देखो मेरे अनंत भाई पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं तो इसमें क्या है मैं पूछता हूँ पर को जानना व्यवहार तो है विभाव है क्या निर्मल जी अरे व्यवहार लिखा वो तो तन्मय होकर नहीं जानते इसलिए व्यवहार लिखा है तो तन्मय होने का अर्थ समझते हो इंद्रसेन जी तन्मय होने का वो अर्थ नहीं है जो आप समझते हो जैसे आप दुकान पर बैठ के धंधे में तन्मय होकर के धंधा करते हो ना ऐसा अर्थ नहीं है और महावीर भगवान ने आत्मा का ध्यान तन्मय होके किया ऐसा अर्थ भी नहीं है तो क्या
हरिपाल जी कल परसों बताया था आप थे मरम के लायक बात है सुनने की। तनुमय मैंने क्या है मनुलाल जी ये मैं हूँ अपने पन की प्रतीति पूर्वक जानना उसका नाम है तन्मय होके जानना और ये मैं नहीं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना उसका नाम है अतन्मय होके जानना। तन्मय माने ध्यान की एकाग्रता का सूचक नहीं है ये श्रद्धा का सूचक है। यही मैं हूँ तन्मय तत्मय उस रूप ही मैं हूँ अपने पन की बुद्धि पूर्वक जानना उसका नाम तन्मय होके जानना है। इसलिए व्यवहार तो इसलिए कहा कि तन्मय होके नहीं जानते लेकिन उसको व्यवहार कहा लेकिन उसको विभाव नहीं कहा लेकिन पर में रमने को तो विभाव कहा है पर में अपनेपन को तो विभाव कहा है मिथ्यात्व नामक विभाव है और वो असंयम नामक विभाव है। ठीक है कि नहीं पर में रमना असंयम नामक विभाव है मिथ्याचारित्र नामक विभाव नहीं और पर को अपना मान कर रमना वो मिथ्याचारित्र नाम का विभाव है। कहाँ लिखा छड़ाला में इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्याचारित्र चार से इसका पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति इसका नाम मिथ्याचारित्र नहीं है। अभय कुमार जी करिए कहाँ लिखा है इसमें ही लिखा है पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति मिथ्याचारित्र नहीं है। यदि हो गए तो हमारे तीर्थंकर जन्म से सहायक सम्मेदृष्टि थे 96,000 साधियों की शांतिनाथ ने तो पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति हुई क्या नहीं तो मिथ्याचारित्र वाले थे क्या वो बोलो तो क्यों क्यों नहीं इन जुत माने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति हो तो और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान साथ साथ माने पांच इंद्रियों के विषयों में सुख है ये मेरे हैं ऐसी मान्यता पूर्वक इसका नाम है इन जुत ऐसी मान्यता और ऐसे ज्ञान पूर्वक जो उनमें प्रवृत्ति है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। तो बोलो सम्यक दृष्टि के पांच इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र होगा वो भी नहीं है हो गया अब सम्यक चारित्र भी नहीं है मिथ्या चारित्र भी नहीं है तो कुछ तो होगा कि उसका नाम जिनागम में असंयम है चरित्र मोहे बस लेस न संयम ऐसोरनाथ जदे है उसका नाम शास्त्र में असंयम दिया है भाई साहब उसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं तो वो तो मानता तो पर को जानना विभाव नहीं है विभाव हो तो बंध का कारण हो जब विभाव नहीं है वो स्वभाव है तो स्वभाव का अंश कभी बंध का कारण नहीं होता। थ्योसुम ज्ञान बंध का कारण है क्या वो पर्याय नाम का थ्योसुम ज्ञान बंध का कारण है कभी निगोदिया में होता क्या नहीं है क्योंकि वो तो स्वभाव का अंश है तो वो थोड़ी वो आत्मा को जानता पर को ही जानता है ना वो बंध का कारण नहीं है क्योंकि वो स्वभाव का अंश है। सब लिखा है डबल वगैरह में देख लो देखो अनंत बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं तो इसमें क्या है ऐसे तूफान क्यों खड़ा करते हो यह तो मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है विचित्र माने अनेकाकार माने अनेक पदार्थ उसमें झलके ऐसी मेरी संपत्ति है। इस स्वरूप और संपदा दो शब्द से प्रयोग है मेरा स्वरूप है और मेरी ये संपत्ति है ये मेरा विभाव नहीं है और ये मेरी विपत्ति नहीं है ये मेरा सौभाग्य है कि अनंत पदार्थ मेरे ज्ञान के गेय बनते हैं ये दुर्भाग्य नहीं है तो भगवान की जो सर्वज्ञता उनका दुर्भाग्य है क्यों केवल ज्ञान कल्याणक के दिनों में केवल ज्ञान पैदा हुआ था तो उनका दुर्भाग्य का उदय आया था कि सौभाग्य का उदय आया था मुझे बताओ क्यों गदे हो गया है कि हमें वो दुर्भाग्य सा लगने लग गया है पहले पूजा पाठ ऐसे हे है ऐसा कहा था उसका तो मतलब तो मुक्ति बंध के कारण है मुक्ति के कारण नहीं है मुक्ति का कारण मानना ये मानना है पूजा पाठ करना है नहीं था क्या क्यों क्यों सही था ना अब वहां तो वो किया अब हमें उतने में संतोष नहीं है क्योंकि वो तो गुरुदेव ही कर गए तो उसमें हमें कहां आश्चर्य हुआ हमें तो लोगों को आश्चर्य पैदा करना है इसलिए वो जानना ही हमारा विभाव हो गया बंध का कारण हो गया। अरे भाई वो तो तेरा स्वरूप संपदा है तो इससे तुझे कोई भय नहीं है। वो पदार्थ तेरे ज्ञान में झलकेगा तो कोई अनर्थ हो जाएगा, इस चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे इंकार भी नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे स्वभाव की ही विचित्रता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए अहितकारी हो। मेरी स्वरूप संपदा में झलकने वाले पर पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ते। हाँ, जब मैं उनमें अपनापन करता हूँ, उन्हें अपना जानता हूँ, तभी मोह उत्पन्न होता है। परंतु मुझे तो ज्ञान प्रकाश प्रकट हो गया, मैं तो ये समझ गया हूँ। कल बहुत विस्तार से कहा था ज्ञान प्रकाश का कि ये मेरे नहीं है, तो मेरे को तो वो खतरा भी नहीं रहा। ज्ञान प्रकाश प्रकट हो गया है, अतः मुझमें झलकते हुए भी वे पदार्थ मुझे मुझ रूप भाषित नहीं होते, अतः मुझमें मोह उत्पन्न नहीं करते।
तो भाई साहब, अपने घर के दरवाजे के सामने से कुल्फी वाला निकले और चिल्लाए, ठंडी कुल्फी मीठी कुल्फी, ठंडी कुल्फी मीठी कुल्फी, ऐसा वो चिल्लाए। अपने बच्चे के टॉन्सिल बढ़ रहे हो और अपना बच्चा रोए कि पापा कुल्फी, पापा कुल्फी, पापा कुल्फी, तो हम कहे इस आदमी को रोक दो, हमारे दरवाजे के सामने नहीं निकला कर रहे। क्या किसी की ताकत नरसिंह राव रोक सकता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी रोक देंगे, अडवाणी जी रोक सकते हैं, कौन रोक सकता है? तो क्लिंटन तो रोक ही देगा, वो तो दुनिया का दादा बन रहा है। क्यों? वो कहता है मैं 2 रुपए का आदमी सही, लेकिन इस सड़क पर से निकलने का मेरे पास पासपोर्ट है, मुझे वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, और मैं चिल्ला चिल्ला के बेचने का मुझे अधिकार है। यदि तुम्हारा बच्चा तो कान कहते हैं जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें तो वो आवाज पड़ेगी, कोई ताकत रोक सकती नहीं है। ज्ञान गुण कहता है कि वो हमारे जानने में आएगी बच्चे के में कि कुल्फी वाला बाहर बेच रहा है, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती है। और वो रोकना कहोगे तो बहरे बन जाओगे, अपना बच्चा जिंदगी के लिए बहरा गूंगा हो जाएगा। ऐसा इलाज करने की कोशिश भी मत करना। तो क्या करें कि बेटा को समझाओ कि बेटा तुम कुल्फी खाएगा तो तेरा गला में दर्द है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा, और तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, क्यों तब फिर तेरे को कुल्फी खाने के लिए देंगे। कैसा वो तो नहीं समझता, तो तेरा बेटा तो तेरे से समझता नहीं है, सारी दुनिया तेरे से समझेगी, बड़ा है। अपना बेटा तो तेरे से रुकता नहीं है और उस कुल्फी बेचने वाले को रोकेगा, उसके कान में आवाज पड़ेगी नहीं, ऐसा ये संभव ही नहीं है। वो गलत जगह पुरुषार्थ है। आखिरकार तो अपने बेटे को समझाना ही, जब वो नहीं समझेगा तो मरेगा, जो नहीं समझेगा वो मरेगा, उसमें वो क्या करे। मेरी एक बच्ची की बच्ची थी, 4-5 बरस की, सही घटना है। तो वो आते ना स्टेशन वाले, खिलौने वाले खिलाते खिलाते बच्चे रोने लगते हैं, तो पूछो कितने का, 2 रुपए का, 5 रुपए, 10 रुपए, बच्चा रोए जोर जोर से, तो मेरे पापा चाहिए चाहिए चाहिए। अब वो रुलाते, उनकी बिचारों की बिक्री इसी की है, उन्हें कोई रोके तो कैसे करे, और उन्हें स्टेशन में बेचने का ठेका लिया है, पैसा दिए गवर्नमेंट को, कोई रोक सकता है? तो मैंने उसे समझाया कि देख, ये तो तेरे को रुलाता है तो रुलाकर 2 रुपए के 10 रुपए लेना है, इसलिए यही चीज 2 रुपए में मिलती है, तू यदि रोएगी नहीं तो यही 2 रुपए में दे जाएगा, रोएगी तो 10 रुपए देना पड़ेंगे, और नहीं देगा तो नहीं भी देगा, बोलते रहो क्या। हाँ, तो ए खिलौने वाले इधर आओ। वो आया, एक खिलौने में कितने में दिया कि 10 रुपए में, 2 रुपए में देता कि नहीं देता, कि नहीं दूंगा 2 रुपए में, 10 रुपए लूंगा। देख मैं रोने वाली नहीं हूँ, तुम मुझे बुद्धि बनाने वाला, रुला के 10 रुपए ऐसे देता, दादा मुझे नहीं चाहिए, चला ला 2 रुपए निकाल, तो 2 रुपए में दे गया। सही घटना। अब उसको पक्का भरोसा हो गया, क्यों? अभी मैं अपनी बच्ची को नहीं समझा पाऊं और उससे लड़ू तो मूर्ख हूं कि नहीं हूं? तू अपने आत्मा को नहीं समझा पाए मूर्ख, कि ज्ञान गेय बनने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, और ज्ञान गुरु के तुम मेरे में मत आओ, मेरे में मत आओ, मेरे में मत आओ, ज्ञान तू उधर मत जा, असंभव काम करना चाहता है। अरे गंगा को हिमालय से कितना पानी बहता है और बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है, रोजाना का नहीं पहुंचता है, एक नया पैसा खर्च होता है। बंगाल की खाड़ी से एक घड़ा पानी लेकर
गंगोत्री में ले जाओ तो पता चल जाएगा, 2-4 हजार रुपया खर्च हो जाएंगे। क्योंकि दीदी और तो सेठी जी ले गए तो 10-5 हजार खर्च हो जाएंगे, क्योंकि जब प्लेन में जाएंगे ना जो धारा जहां बह रही है वो तो मुफ्त में जाती है, उसको कोई कदम खर्चा नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। और तू उल्टी धारा बनाने बहाना चाहता है। जो ज्ञान का स्वभाव और गेय स्वभाव, गुरुदेव ने तो किताब लिखी ज्ञान स्वभाव और गेय स्वभाव, क्या मतलब किताब में क्या लिखा पूरा पढ़ी आपने? कि आत्मा का स्वभाव जानने का है, ऐसा भेद किया कि स्व को जानने का है पर को जानने का नहीं है ज्ञान स्वभाव में, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय उसी ज्ञान स्वभाव किताब में से निकली क्या नहीं निकली बोलो? अपन ने तो क्रमबद्ध पर्याय लिखी है गुरुदेव में, क्रमबद्ध पर्याय की जो किताब है उसका नाम है ज्ञान स्वभाव और गेय स्वभाव। क्यों निर्मल जी? तो ज्ञान स्वभाव सारे लोकालोक को जानने उसमें सिद्ध किया कि नहीं, और गेय स्वभाव सारे लोग तब तो वो क्रमबद्ध सिद्ध होगी ना, किस द्रव्य का किस क्षेत्र में किस भाव में कब क्या होगा। अगर अपना क्रमबद्ध जाना हो ज्ञान स्वभाव में के सारे द्रव्यों का क्रमबद्ध जाना। अभय कुमार जी तो उनने लिखी ज्ञान स्वभाव किताब, और ये लिखता है भाई कि ज्ञान स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव क्या है, गे का स्वभाव क्या है मैं पूछता हूँ, द्रव्य का स्वभाव क्या है, पर्याय का स्वभाव क्या है? द्रव्य और पर्याय का स्वभाव किसी के ज्ञान का गे बनना है कि गे नहीं बनना है बोलो? क्यों अरे पर को नहीं जाने सर्वथा मानोगे तो 5 द्रव्य तो बिना ही जाने रह जाएंगे, क्योंकि उनमें जानने नाम का स्वभाव ही नहीं है, ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है, उन्हें कौन जानेगा? तो बोलो 6 द्रव्य है ये कैसे सिद्ध करोगे बाबूलाल जी साहब? ये 6 द्रव्य किसी ने जाने के नहीं जाने, किसने जाने? सर्वज्ञ ने जाने। तो उनके लिए वो 6 द्रव्य स्वाहे के पर है उन्हें जाने, और पर को जानना तो असत्यार से झूठा है, तो इसका मतलब ये 6 द्रव्य नहीं है तो झूठे हैं या सच्चे हैं? वो तो सर्वज्ञ की वाणी सच्ची मानू का नहीं, सुमेरु पर्वत है और 1,00,000 योजन ऊंचा है, ये सच्चा है क्या झूठा है बोलो? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो भगवान ने तो विभाग से जाने, विभाग झूठा होता है, तो इसका मतलब है कि सुमेर पर्वत नहीं है, तो सुमेर पर्वत के जानने से पाप लगता होगा? गजब हो गया कि और विषय कसार में ऐसे जमे रहे हैं, सब चलता है उनमें तो इसे पाप नहीं दिखता है, और ये सुमेर पर्वत को जानने में पाप लगता है। करुणा नियोग के प्रकरण में एक बात लिखी है टोडामल जी ने मारने को, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सुमेर पर्वत की बात, धर्मधारी इनके धारी चैत्यालयों की बात, उनकी बात क्यों जाने, क्यों पढ़े? तो इसे जाने तो आसपास की नहीं, आसपास की जानोगे तो पाप लगेगा, सुमेर पर्वत की जानोगे तो पढ़ने लगेगा। क्यों सेठी जी? दिल्ली में जाकर के बहुत अच्छी जमीन पड़ी है, बिकाऊ है, तो खरीदने का मन होगा क्यों? लेकिन सुमेर पर्वत पर खरीदने का मन होता है क्या? एक फ्लैट वहां भी बना लू क्यों? इसलिए जहां तुम्हारी पहुंच है उसको जानोगे तो राग देश के चांस ज्यादा है, और जहां तुम्हारी पहुंच नहीं है उसको जानोगे तो राग देश के चांस करना नहीं होगी। तो गीत राग भाव से जानना उसका हो सकता है, अड़ोस पड़ोस का तो राग भाव से जानना होता है। देखो क्योंकि मुझे महान ज्ञान प्रकाश प्रकट हुआ है कि मुझे रहस्य पता चल गया है। कि क्या रहस्य पता चल गया है? ये पर पदार्थ मुझे मुझ रूप नहीं भासते, इसलिए मुझे कोई मोह उत्पन्न नहीं करते है। क्यों? वो है ना कौन से गैलेक्सी कंपनी के शेयर के भाव बहुत बढ़ गए। क्यों? कंपनी बढ़ गए, बढ़े कितने बढ़े, कितने बढ़ गए, कितने बढ़े, कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए? रोखारी ऑफिस पूछते ही नहीं है, अरे बढ़ गए ना, तो मेरे पास तो कोई है ही नहीं। आगे वाले लोहारिया की बात है, पीछे वाले लोहारिया तो पूछेगा, उसके पास तो होंगे मुझे कुछ नहीं, बढ़ गए तो ठीक, नहीं बढ़ गए तो ठीक, मुझे कुछ लगता ही नहीं जैसे कुछ हो गया हो। क्यों? चाहे बढ़ गए हो चाहे घट गए हो, और जिसके पास रखे हैं उसको उसकी हार्ट की धक 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 शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती बोलिए? तो धक धक तो कैसे हुई है? शेयर के भाव जानने से थोड़ी हुई है, समझ गया ना? उसके पीछे धक धक का कारण कुछ और है, तो ये उस चीज का निषेध तो नहीं करता है, और उसके पीछे वो जानने का निषेध करता है। जो बिल्कुल निर्दोष है उसका निषेध तो नहीं करता। सबकी ऐसी ही खोटी आदत है, घबराना नहीं। दो लड़का लड़की कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, भाग गए। लड़की का बाप कहता है कि मेरी लड़की को नालायक उसका लड़का उड़ा ले गया। और लड़के का बाप कहता है मेरा लड़का तो सीधा सच्चा है, उसकी लड़की मेरे लड़के को उड़ा ले गई। बोले सच्ची बात क्या, कोई ने किसी को नहीं उड़ाया, दोनों अपने आप उड़ के गए। अदालत भी यही कहती है कि तुम्हारी लड़की को उसका लड़का उड़ा ले गया होगा तो उसको जेल में डाल दूंगा मैं, और तुम्हारे लड़के को उसी लड़की उड़ाई उसे भी जेल में डाल दूंगा, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा। और वे दोनों अदालत में बयान दे रहे थे कि हम तो अपनी राजी से गए, तो माँ बाप मोहलत का के लौट के आ जाओ बस। और वे कहते कि हाँ मुझे उड़ा ले गया, तो उसे गिरफ्तार कर देते। लोग में भी यही है कि नहीं है, गड़बड़ तो ये है कि गे जबरदस्ती ज्ञान में घुस जाए तो गेहूं को जेल में डाल दो, ज्ञान जबरदस्ती गेहूं में घुस जाए तो ज्ञान को गे में डाल दो। लेकिन गे कहते हैं हम तो स्वागत करते हैं ज्ञान जाने, तो ज्ञान कहता है गे हम में आए तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अपना अपना स्वभाव है। अब दोनों उड़ते हैं तो हम क्या करें। तो दोनों का विकार है क्या, प्रमेयत्व गुण जो है क्षेत्रों में वो विभाव है का स्वभाव है, और ज्ञान गुण है वो स्वभाव है का व्यवहार है। सुपर प्रकाश का शक्ति है जो क्या है, अशक्ति है बोलो आत्मा की। देखो भैया मैं पंडितों की भाषा में ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये बताओ मुझे लिबरेशन लिखा है पर पदार्थों को जानने मात्र से, है ना आपके पास किताब, सेठी जी को दो भैया किताब, सबसे नीचे का पैरा पेज नंबर 305 है ना, पर पदार्थों को जानने मात्र से उनसे मोह उत्पन्न नहीं होता, मोह तो उन्हें अपना जानने से, उन्हें अपना मानने से, उनमें जमने रमने से उत्पन्न होता है। कितना साफ लिखा है, हाथ में रखे वाले जैसा। किंतु मैंने पर में गे भावों में और भावक भावों में अपनेपन की मान्यता को निज रस के बल से जलमूल से उखाड़ फेंका है। निज रस के बल से, निज रस का अर्थ कल बताया था, कौन बताएगा, मैं भी पूछ सकता हूँ क्या, अकेला कोई पूछेगा क्या नाम, अपने पूछने वाले भाई का नाम क्या है। हाँ सुमित जी, सुमित जी पूछेंगे मैं भी पूछ सकता हूँ, सुमित जी पूछेंगे तो इनाम मिलेगा, मैं पूछूंगा तो इनाम मिलने वाला नहीं है। क्या कहा था, निज रस से, निज रस माने अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वही मैं हूं, ऐसी दृढ़ प्रतीति, ऐसा जानना और ऐसा दृढ़ प्रतीति पूर्वक जान कर उसमें ही जमना, उसका नाम है निज रस। और इस निज रस के बल से मैंने उसको उखाड़ फेंका है, किसको उखाड़ फेंका, के गे भाव और भावक भाव, है ना 31-32 गाथा वाले कहा गया ना, और यही 36-37 गाथा वाले, वो मेरे हैं इस मान्यता को जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। कैसा, जैसे चाणक्य ने उखाड़ फेंका था उस बबूल के पेड़ को कि द्वारा ना उग जाए, उसका नाम है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। कि मोह का पुनः अंकुरा फूटने का अवसर नहीं रहे, कि मेरे पड़ोसी बहुत ईमानदार हैं, आज तक मेरी कोई एक चीज को उनने हाथ नहीं लगाया, ऐसी बात है कि हाँ, तो फिर तुमने तीन तीन पहरेदार काय को रखे बंदूक वाले, तुम्हारे पड़ोसी इतने ईमानदार हैं तो, कि इसीलिए तो वे ईमानदार हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा कोई देखने वाला नहीं होता, सारा माल बाहर पड़ा होता और मैं 6 महीने को बाहर चला जाता तो बेई पड़ोसी सिंगमरमर के पादिया नहीं, धीरे धीरे एक एक ईंट उठा ले जाते और जहां तक बनता आधा मकान तो अब बिना ही खप्पर का हो जाता। होता कि नहीं होता बोलो, छोड़ के आओ अपने मारवाड़ में एक आध मकान को और 6 महीने बाद जाना फिर क्या हालत होती है। क्यों कासरीवाल जी होगा इसका अनुभव क्या नहीं, तेरे को प्ररूप क्यों भाषित नहीं हुए, पर पदार्थ निज रूप भाषित क्यों नहीं हुए, कि मैंने तीन तीन गोरखे बंदूक लेके बैठा रखे हैं और वो कौन, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, श्रद्धा गुरु की निर्मल पर्याय के ये मेरे नहीं है, ज्ञान गुरु मैं जानता हूँ मेरे नहीं है, और क्या मुझे रस नहीं, ऐसा नाम निज रस का पहरा होने से अब मेरे को कोई खतरा नहीं है। काय का खतरा नहीं है कि अनंत पदार्थ मेरे ज्ञान के गे बने तो मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। अब मैं पूछता हूँ कि मेरी बेटी समझ गई है, अब कितने खिलौने वाले उसके सामने आए तो मुझे क्या खतरा है कि वो घंटे घंटे बजाए कि बेटा जरा तुम बजाते ही रहना यहीं खड़े रहे क्यों जब तक गाड़ी चलने रहे तो यहीं खड़ा रहना क्योंकि मेरी बेटी को मुफ्त में नाटक देखने को मिले ना। खरीदने वाली तो है नहीं समझ गई है तो एक मिनट में भाग जाएगा और उसे भैया जरा मेरे पास पैसा तो नहीं है मेरी बच्ची को डुगडुगी सुना देने का नहीं बचता है तो सुनवाई के पैसा भी मांगने लगेगा क्यों मांगने लगेगा कि नहीं मांगने लगेगा बोलो आप क्या तुम चला भैया क्या तू जा यहां से तुम कह तू जा तो खड़ा रहेगा पर बता तेरा सहयोग करेगा क्या अब मेरे को कोई खतरा नहीं है मेरा पक्का इंतजाम है। खतरा काय का था कि ये अनंत गे पदार्थ मेरे ज्ञान के गे बनते थे तो मुझे ये खतरा था कि मेरा आत्मा इन पे रींझ ना जाए। अब मेरे को ज्ञान प्रकाश हो गया है कि मेरे तो ये है ही नहीं अब मुझे कोई खतरा नहीं है तो अब क्या करें मेरे ज्ञान के गे पे बने के नहीं बने निर्मल जी कि बने तो बनू और नहीं बने तो नहीं बनू मुझे कुछ लेना देना नहीं है। निष्कर्ष कहाँ पहुंचना है कहाँ अब तो खूब बने तो मैं खूब जानूंगा तो मर गया अब तेरे को पर को जानने का रस पैदा हो गया तो निजरस खत्म हो गया। पर के जानने का रस नहीं होना रस का तो निषेध है तो मैं नहीं जानूंगा तो नहीं जानने का रस भी नहीं होना तो क्या होना कि जानू जानने में आएंगे तो जान लूंगा और नहीं आएंगे तो नहीं जानूंगा मुझे उन बारे में कोई विकल्प ही नहीं है न जानने का विकल्प है न नहीं जानने का विकल्प है इसका नाम धर्म है। शांति का उपाय यही है गेहूं को जानने का विकल्प भी अशांति है और नहीं जानने का विकल्प भी अशांति है जो होगा सो हो जाएगा और वो स्वभाव ही होगा और क्या होगा बोलो। लोक में भी कोई सुखी कैसे रह सकता है मैं इसके लिए एक उदाहरण दिया करता हूं क्या कि पंडित जी आपका 8:30 प्रवचन है कि ठीक है बहुत बढ़िया अच्छे लोग आए सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा अच्छी बात है फिर अगर नहीं 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 वो आपका तो कैंसिल कर दिया है कि ठीक किया मेरा गले में तकलीफ भी थी आज आराम मिल जाएगा नहीं नहीं साहब वो आपको तो करना पड़ेगा क्योंकि जिस वजह से कैंसिल किया था वो तो कारण समाप्त हो गया है तो कोई बात नहीं है चलो बोले इसको कौन दुखी करेगा दुनिया की कोई ताकत है कि नहीं। मैं एक बात कहता हूं माताओं बहनों की सास के पुण्य का उदय किसे कहते हैं जानते हैं आप सास का पुण्य का उदय किसे कहते हैं कि बहू की जो इच्छा हो वो ही इच्छा सास की हो तो समझ लेना सास के पुण्य का उदय है। कैसे क्यों बहू कहे कि अम्मा जी मैं तो तुम्हारे साथ प्रवचन सुनने चलूंगी कि बेटी यही तो मैं चाहती थी तुम लोग भी सुनो भले ही यदि बच्चे को लेना हो तो मैं लेके रखूंगी लेकिन तू बेटी सुनने जरूर जाना। बहू भी खुश और सास भी खुश। तो बहू ने कहा कि मम्मी आज तो मैं प्रवचन सुनने नहीं जाऊंगी क्यों कि आज तो वो कौन सा पार्क आया है जुरासिक पार्क उसमें जाने के देखने का विचार है मेरा कि बेटी जरूर जा तूने देखी तो कौन दुखा मैं देखूंगी बुढ़ापे में तेरे से खेलने खाने के दिन है क्यों लेकिन अम्मा जी एक बात है कि क्या तेरे छोकरा थोड़ा परेशान करेगा यही तो मैं सोच रही थी कि तू जाएगा और इसे ले जाएगी तो मेरे 3 घंटे कैसे कटेंगे तू जा लेकिन छोकरे को तो छोड़ जा तो मैं इसके साथ खेलती रहूंगी। वो 5 मिनट आई कि नहीं मम्मी मम्मी वो तो कह रहे हैं कि नहीं बच्चे को भी ले चलो साथ में वो कब देखेगा और उसे भी दिखा लाएंगे इन्हें मैं ले जाती हूँ कि ठीक है ये मुझे परेशान कर पाया समझ लेना ऐसी सास को कोई बहू दुखी नहीं कर सकती है दुनिया में। अब गुरुदेव उदाहरण देते थे वो सत्ता प्रिय सास का वो सास कभी सुखी नहीं हो सकती है कौन सी सत्ता प्रिय सास है आदमी इंद्रसेन जी नहीं मैं बताता हूँ कोई खबर आगे नहीं कि वो पहले गांवों में छांस लेने के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत आते थे सेठ के यहाँ भैंसे होती थी तो वो घी ही तो निकाल के खुद खाता था और छांस मोहल्ले वालों को बांट देता था तो मोहल्ले की औरतें आती थी ना छांस लेने तो सास मंदिर गई थी एक मोहल्ले की औरत आई छांस लेने तो बहू से मांगी छांस तो बहू ने कहा अब तो खत्म हो गई छांस अभी है नहीं आज तक तो वो लौट के वापस आ रही थी सास वहां से मंदिर से लौट के आ रही थी रस्ते में दोनों टकराई तो सासू ने कहाँ गई थी कि आपके यहाँ गई थी कि क्यों गई थी कि सांस लेने गई थी तो क्या हुआ कि बहू ने कह दी कि सांस नहीं है वो तो कौन नालायक होती है ये कहने वाली कि सांस नहीं है चलो मेरे साथ वो खुश कि बहू तो नालायक है उसने सांस दी नहीं है अब अम्मा जी दे देंगी तो साथ साथ गई बैठ के कुर्सी पे बैठी अम्मा जी बा सामने उसे बैठाया बोले बोलो क्या करोगे क्यों आई थी अरे तो वहीं बता दिया था ना सांस लेने नहीं नहीं वहां तो बता दिया अब यहां बताओ द्वारा कैसा अम्मा जी मैं सांस लेने आई हूं तो सांस नहीं है तो ये तो बहू ने भी कह दिया था आपने द्वारा मुझे परेशान क्यों किए कि जब तक मैं जिंदा हूं बहू को किसी को मना करने का और हां करने का अधिकार क्या है हां करूंगी तो मैं और मना करूंगी तो मैं ऐसी सास का भगवान ही मालिक है क्यों वो तो उसे अनंत दुखी रहना है कि जो बात तूने कही वही बहू ने कही तो भी बहू की नहीं चलेगी तो भी किसकी चली तेरे को ये चक्कर है कि इसमें से किसकी चली मेरी चली के बहू की चली ये तेरे दिमाग में ये चक्कर है इसका भगवान ही मालिक है तो हम क्या करें गयों के प्रति कौन सा रवैया अपनाएं अरे वो ही रवैया कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं चाहे मृत्यु आ जी तैयार हूं मौत आज तो तैयार जियो के हाँ जीने को भी तैयार हूं और मरने के लिए भी तैयार हूं ख्याल में आया ना ऐसे ही पर पदार्थ जानने में आवे तो जानने के लिए भी तैयार हूं नहीं जानने में आवे तो नहीं जानने के लिए भी तैयार हूं कि साहब आप थोड़ा निवेदन करो तो गे जानने में आ जाएंगे मुझे कोई निवेदन फवेदन नहीं करना है जानने के लिए मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना है तो आप ये निवेदन करो कि आपके जानने में नहीं नहीं जानने का निवेदन भी नहीं करना है मुझे कुछ नहीं करना है क्या तो मैं तो उसके प्रति मध्यस्थ भाव को धारण करता हूं अरे भाई इस काम में ही उलझ जाऊं ये जानू ये नहीं जानू ये नहीं जानू उसमें तो केवल ज्ञान में तो शास्त्र में ये लिखा है कि सब पदार्थ एक साथ झलकते हैं इसलिए वहां तो ये सुविधा है ही नहीं कि किसे जाने और किसे नहीं जाने तो फिर तुम ज्ञान में तो है ना दादाजी नहीं है नहीं है पर परीक्षामुख सूत्र में लिखा है कि क्या स्वावरण संयोग सम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्था देती कि ज्ञान की हर पर्याय में कौन गे बनेगा ये अनंत काल पहले से सुनिश्चित है यदि जी आपकी इस समय ज्ञान की पर्याय में क्या गे बनेगा कि मैं ये बता रहा हूं ये गे बनेगा ये एक लाख वर्ष पहले भी भगवान पारसनाथ मुनि सुब्रतनाथ जो भी हो वो बता सकते थे ये नक्की है एक एक समय की ज्ञान पर्याय की योग्यता का कौन गे बनेगा ये सब सुनिश्चित है श्यामचंद भाई का वो बोल भूल गए गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता है ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है तो सेठी जी कहे कि आप तो मेरे सामने यहां बैठे और बोल रहे हैं इसलिए मेरे ज्ञान का ये गे बन रहा है वो अनंत काल पहले था इसलिए बन रहा है इसकी क्या गारंटी है नहीं है गारंटी कि मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना तो भी आपके ज्ञान का गे कोई दूसरी चीज बननी हो तो न मालूम वो बीच में कब का आदत जाएगी कि कितनी बढ़िया बात निकली ये बात को यदि मैं अपनी पत्नी को भी ले आता तो वो भी सुन लेती ये विकल्प आया तो वो ज्ञान पत्नी ज्ञान का गे बन गई पंडित होमचंद गायब हो गया तो दिल्ली में बैठी अलाय हो गए दिल्ली में दिल्ली में ज्ञान का जो तो बन सकती ना एक सेकंड में ही पंडित होमचंद बैठा रह जाए बोलता रहे चिल्लाता रहे स्पीकर से चाहे जो कुछ होता रहे ज्ञान का गेट दूसरा बन जाता ना और वो भी केवली ने जाना था कि बीच में एक समय को आपको ऐसा विकल्प आएगा और ज्ञान का गेट वो बन जाएगा और ये बात जब तक निकल जाएगी ये सब नक्की है सूत्र बताऊं बोल के शास्त्र में लिखा है ये बात बताऊं आप तो नया शास्त्र के विद्वान है बताऊं पंडित जी केशव नृप ज्ञान बच मृतंतर ज्ञान बच्चे केशोंडुक ज्ञान बक माणिक नंदी आचार्य ने लिखा। केशोंडुक ज्ञान क्या होता भैया, नहीं जानते? देखो जब ये बाल है ना, बड़े बड़े घुंघराले बाल हो, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बिखरे हो और खूब हवा चल रही हो, तो ऐसी लट आ करके इधर इधर ऐसी ऐसी होती है कि नहीं होती? तो वो लट यहाँ आती है तो उसको ऐसा भ्रम होता है कि ये मच्छर आया, मच्छर भिनभिना रहा, तो ऐसा भगाता है। केश उंडुक, केश में मच्छर का ज्ञान। वो कहते आचार्य कहते है तो केश, सामने है क्या केश, और ज्ञान का गेय क्या बन रहा है मच्छर। यदि पदार्थ सामने है वो ज्ञान का गेय बनने का नियम होता तो केश है तो केश ही ज्ञान का गेय बनना चाहिए था, लेकिन ज्ञान का गेय बन रहा है मच्छर। इससे मालूम पड़ता है गेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के अनुसार गेय जाना जाता है, क्योंकि उस ज्ञान पर्याय में उस समय मच्छर को जानने की योग्यता है तो मच्छर ही जानने में आएगा। ये है कि नहीं है नक्का? और क्रमबद्ध पर्याय में मैंने लिखा है खूब खोल खोल के, और माणिक नंदी आचार्य का उदाहरण देकर के, और वो तो गुरुदेव के सामने निकल गई थी और गुरुदेव ने उसका अनुवाद करा के आत्मधर्म में छपाई थी। उसके पहले कोई चीज किसी की गुरुदेव के अलावा पंडित की चीज गुजराती आत्मधर्म में नहीं छपी थी। क्यों? जब तक आत्मधर्म मेरे पास संपादन में नहीं आया था तब तक तो हिंदी में भी नहीं छपी थी। क्यों? पढ़ लिया था ना, उन्हें उनको मंजूर थी ये बात का नहीं थी, बोलो? तो वो तो क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय में भी योग्यता है, तो तू एक गेय को भी पलट नहीं सकता कि मेरी ज्ञान पर्याय किस गेय को जाने, जो गेय नक्की है वही को जानेगा। तो गुरुदेव बोलते हैं ऐसा जानेगा तो तेरे हाथ में कुछ काम नहीं रहा, तो तेरा अकर्ता स्वभाव प्रकट होगा, तो दृष्टि पर से हटकर स्वभाव के सन्मुख जाएगी, और जब तक ज्ञान को भी पलटना है ऐसी मान्यता तेरी रहेगी तो दृष्टि स्वभाव के सन्मुख नहीं जाएगी, पर के ही सन्मुख रहेगी, क्योंकि ज्ञान को पलटा पलटी करता रहूं, इस गेय को जानू, इस गेय को नहीं जानू, इस गेय को जानू, इस गेय को नहीं जानू। तो हम क्या करें गेयों के प्रति व्यवहार? के कुछ मत कर। तो क्या करेंगे तुम? अपने आत्मा का अनुभव करो। ख्याल में है ना कि वो भी नहीं हो छोड़ दो, जो होगा हो जाएगा। वो सब हर एक गुण में ताकत है कि उसकी एक समय की एक पर्याय हुई, तो ज्ञान गुण की एक पर्याय होगी, तुम्हारे लिए अपेक्षा नहीं रख रही है। और तुम किसको जानो, तुम्हारा इंतजार नहीं करती है, वो अनंत काल पहले कार्यक्रम में फिक्स है। ख्याल में, वो अपने आप ज्ञान का गेय बन जाएगा। जो तुम्हारी दृष्टि इतनी हल्की हल्की माने बदन रहे निर्भार हुई, अगले समय तुम्हारा भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बना होगा। क्योंकि ऐसे जीव को जिसका अगले समय भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बनना होता है, इतना निर्भार पना उसी की ज्ञान पर्याय में आता है। एक समय पहले ऐसा निर्भारपना आएगा विकल्पात्मक ज्ञान में, तो अगले समय में भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बन जाएगा। क्यों? समझ में आया? नहीं समय तो हो गया, एक मिनट में खत्म करता हूँ। कोई कन्या किसी के गले में वरमाला डालती है तो उसके एक समय पहले उसके गले में वरमाला डालने का भाव आता है कि नहीं आता है? क्या है भैया? समय खत्म हो गया भैया। क्या आता कि नहीं आता है? तो भाव बाद में आएगा, माला पहले डल जाएगी। क्यों आता कि नहीं आता है? ऐसे ही अकर्तित्व का विकल्प पहले आता है, बाद में अकर्ता स्वभाव प्रकट होता है। अकर्ता स्वभाव के विकल्प पूर्वक अकर्ता स्वभाव प्रकट होता है। तो पहले तेरा इतना अकर्ता स्वभाव तो प्रकट हो, ज्ञान मेरा काम है और उसको तो मैं बराबर अपने हिसाब से लगाऊंगा, तो तेरा कहीं लगने वाला नहीं है। वो ज्ञान अपने हिसाब से लगेगा, तेरे विकल्प के हिसाब से नहीं लगेगा। ये निर्णय पूर्वक अकर्ता स्वभाव का निर्णय होता है। हो गया? अभी समय क्या कोई परिचय दे गया है क्या?